arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव।
द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेसी मंत्रिमंडल का त्याग पत्र। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जिसका प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता से बिना कोई सहमति लिए भारत के युद्ध में प्रवेश होने की घोषणा कर दी। युद्ध आरंभ होते ही कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया। इसने जर्मनी, इटली, जापान आदि फॉस्टिक देशों द्वारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों पर किए गए आक्रमणों की निंदा की। साथ ही आक्रमणों के शिकार हुए देशों की जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट की। ब्रिटेन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ने का दावा कर रहा था। उसने भारतीय जनता की स्वतंत्रता छीनकर भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया था। अतः कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव में कहा, भारतीय जनता की लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के पक्ष में पूरी सहानुभूति है, क्योंकि हाल में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए भारत की जनता ने स्वेच्छा से महान बलिदान किया है। पर भारत का एक ऐसे युद्ध से दूर का भी संबंध नहीं हो सकता जो सिद्धांत के रूप में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है, पर व्यवहार में स्वयं उससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि भारत में एक ऐसी भारतीय सरकार की स्थापना की जाए जो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। साथ ही ये भी वचन देने की मांग की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को आजाद कर दिया जाए। पर ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की। फलतः जिन प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उन सब ने 1938 में त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए ये युद्ध लड़ रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह। यद्यपि ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति अच्छा नहीं था, फिर भी कांग्रेस कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे सरकार की युद्ध के समय मुसीबतें बढ़ जाएं। अतः 1940 में कांग्रेस की सहमति से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। चुने हुए सत्याग्रही किसी सार्वजनिक स्थान पर युद्ध विरोधी भाषण देकर कानून तोड़ते और स्वयं को गिरफ्तार कराते थे। सत्याग्रह के लिए पहले व्यक्ति के रूप में विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही नेहरू थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही व्यक्तिगत सत्याग्रह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। 6 महीनों के भीतर लगभग 25,000 व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। सरकार का दमन भी जारी था, पर सत्याग्रह आंदोलन दृढ़ता के साथ चलता रहा। इसी समय जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। जापान ने अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। फलतः अब विश्व युद्ध विध्वंसक रूप से शुरू हो गया। जापानी सैनिक भारत की पूर्वी सीमा पार संगीन ताने खड़े थे। सांप्रदायिक वैमनस्य एवं पृथकतावादी भावनाओं का जन्म। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सहयोग अधिक दिनों तक नहीं रह सका। 1938 के बाद कई कारणों से मुसलमानों के मन में एक नया विचार पैदा हुआ। दो राष्ट्रों का सिद्धांत मुस्लिम लीग का सिद्धांत बन गया। उसने कहना शुरू किया कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, अतः दोनों का एक साथ मिलकर रहना संभव नहीं है। दो राष्ट्रों के सिद्धांत के प्रतिपादक मोहम्मद अली जिन्ना ने दावा किया कि मुसलमानों की एकमात्र संस्था मुस्लिम लीग है। उनके अनुसार कांग्रेस केवल हिंदुओं की संस्था थी। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव लाया गया। जिन प्रांतों में मुसलमानों को बहुमत प्राप्त था उन्हें भारत से अलग कर एक नए देश पाकिस्तान के गठन की मांग होने लगी। अधिकांश मुसलमानों ने अलग राज्य बनाने की मांग का घोर विरोध किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे अनेक राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मांग राष्ट्रीयता की भावना के विरुद्ध है तथा मुसलमानों के हित में नहीं है। खुदाई खिदतगार नामक संगठन के सम्मानित नेता अब्दुल गफ्फार खान, जो सरहदी गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी मुसलमान लीग की मांग का विरोध किया। इस तरह बलूचिस्तान की वतन पार्टी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, अहरार पार्टी आदि संगठनों ने मुसलमान लीग मुस्लिम लीग की मांग के विरुद्ध आवाज उठाई, पर मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन से प्रोत्साहन पाकर अपनी मांग पर डटी रही। युद्ध की नाजुक स्थिति और क्रिप्स योजना। कांग्रेस ने युद्ध में ब्रिटिश शासन को सहायता नहीं देने का प्रस्ताव पास किया। इधर मुस्लिम लीग बहुसंख्यक मुस्लिम प्रांतों को भारत से अलग करने और पाकिस्तान नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की मांग कर रही थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार बुरी तरह युद्ध में फंसी थी और युद्ध का रूप भयंकर होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीयों का सहयोग लेना अनिवार्य हो गया। अतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव लेकर स्टैमफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए मार्च 1942 में दिल्ली भेजा गया। उस प्रस्ताव में दो योजनाएं थीं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम चरण 1937 से 1947। दूरकालीन योजना, जो युद्ध के बाद कार्यान्वित की जाने वाली थी। इसके अनुसार एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसके अधिकांश सदस्य प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा और कुछ सदस्य देशी राज्यों के नरेशों के द्वारा चुने जाते हैं। वो भारत का संविधान तैयार करती, किंतु उस संविधान को मानना या न मानना प्रांतों की मर्जी पर निर्भर करता। तत्कालीन योजना, इसके अनुसार केंद्र में अस्थायी सरकार की स्थापना होनी थी। योजना के अनुसार केंद्रीय शासन के सभी विभागों पर ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार होता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अगस्त 1942 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई और 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने समिति के समक्ष अपना भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। कांग्रेस कार्य समिति में दिए गए भाषण में महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से राष्ट्र को करो या मरो, डू और डाई के संघर्ष के लिए आह्वान किया। ब्रिटिश शासन पहले से ही इस प्रस्ताव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तैयार थी। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त को सरकार ने महात्मा गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इससे जनता में बड़ी उत्तेजना फैल गई और सारे देश में क्रांति की ज्वाला धधक उठी। सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, सभाएं और जुलूस निकले, पर सरकार ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबाने के प्रयास किए। कुछ ही दिनों में आंदोलन ने क्रांति का रूप धारण कर लिया। सरकारी कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भागने लगे। बलिया, मिदनापुर आदि में समानांतर सरकार कायम की गई। यातायात के साधनों को नष्ट कर दिया गया। तार और डाक की व्यवस्था खत्म कर दी गई। रेलगाड़ियों का आना जाना बंद हो गया। आवागमन एवं संचार के साधनों के अभाव में सरकारी कार्यालयों के बीच संपर्क टूट गया। सारे भारत में लगभग 1 महीने तक सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही। अगस्त के अंतिम सप्ताह में वॉयसराय लिन लिथगो ने प्रधानमंत्री चर्चिल को लिखा कि मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसे 1857 के बाद खतरनाक विद्रोह कहा जा सकता है। प्रधान सेनापति वेवल का कहना था कि इस आंदोलन के कारण पूर्वी मोर्चों पर ब्रिटेन के सैनिक कमजोर हो गए तथा सेनाओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने कहा। शाम को अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक आम सभा में छात्रों से कांग्रेस के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का अनुसरण करने के लिए अपील की गई। 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक दल बिहार विधानसभा भवन पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए पटना सचिवालय के पास पहुंचा। उस समय तक वहां हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। उसी समय पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। झंडा फहराते समय 7 छात्र शहीद हो गए। पटना सचिवालय के मुख्य द्वार के समीप इन अमर शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के गवर्नर ने वॉयसराय को पत्र लिखा। उसके अनुसार पटना में आंदोलन की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सभी जिलों में संपर्क टूट गया था। बाद में श्री राजेंद्र बाबू तथा अन्य राजनीतिक बंदियों को हजारीबाग जेल भेज दिया गया, जहां जयप्रकाश नारायण पहले से ही नजरबंद थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह, सूर्य नारायण सिंह और गुलाली सोनार के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए। 1942 की अगस्त क्रांति का भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन सरकार की कठोर दमन नीति के कारण सफल नहीं हो सका, पर इसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पुख्ता पृष्ठभूमि तैयार कर दी। क्रांति में भारतीय जनता ने अपूर्व साहस और धैर्य का परिचय दिया। लाखों युवक क्रांति में मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। इससे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीयता की भावना अपनी पराकाष्ठा पर थी और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन का कायम रहना संभव नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता की भावना काम कर रही थी। पहला, मित्र राष्ट्रों ने स्वाधीनता और लोकतंत्र के नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ा था। युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा अन्य महादेशों में स्थित मित्र राष्ट्रों की जनता स्वाधीनता की मांग करने लगी। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी शुरू किए। दूसरा, युद्ध के बाद विश्व की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि साम्राज्यवादी देशों में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वे अपने विरुद्ध होने वाले आंदोलन को रोक लेते। फलतः उनके अधीनस्थ देश एक एक करके स्वतंत्र होने लगे। तीसरा, युद्ध में सोवियत रूस की सर्वाधिक क्षति हुई, पर अब वो और भी शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। चौथा, अनेक यूरोपीय देशों में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई। पांचवा, ब्रिटेन अब विश्व शक्ति नहीं रह गया। छठवां, इस समय भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध चरम सीमा पर था। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, उसमें लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने अकाल पीड़ितों की राहत के लिए कुछ नहीं किया। इसमें युद्ध के बाद लोगों का दबा हुआ क्रोध ब्रिटिश शासन को आखिरी चोट देने के लिए फूट पड़ा। सातवां, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। इससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। आठवां, भारतीय नौसेना के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया। इन सब स्थितियों में ब्रिटिश सरकार को ये स्पष्ट हो गया कि भारत को अब और पराधीन रखना संभव नहीं है। वैवेल योजना और शिमला सम्मेलन। सन 1943 में वैवेल भारत में वॉयसराय होकर आए। अंतरिम सरकार की स्थापना हेतु वैवेल ने एक योजना प्रकाशित की, जिसे वैवेल योजना कहते हैं। इस पर विचार करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का शिमला में एक सम्मेलन हुआ, पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद के कारण ये योजना सफल नहीं हुई। कैबिनेट मिशन। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में चर्चिल की सरकार का पतन हुआ। जब तक चर्चिल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का विरोध ही किया। चर्चिल सरकार के पतन के बाद इटली के मजदूर दल की सरकार बनी, जिसने भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करने का निश्चय किया। अतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल की ओर से 3 प्रतिनिधियों का एक मिशन भारत आया। इस मिशन की योजना को कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। इसके अनुसार भारत को स्थायी संविधान बनाने और उसके निर्माण हेतु एक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। जब तक संविधान नहीं बन जाता, तब तक केंद्र में एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज और सैनिकों का विद्रोह। आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के विचार गांधी जी से पूरी तरह नहीं मिलते थे। उनका अंग्रेजों की भलमनसाहत पर भरोसा नहीं था। गांधी जी के विरोध के बावजूद 1939 में वे कांग्रेस के सभापति दोबारा चुने गए थे, पर कांग्रेसियों के विरोध के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जिस समय भारत में 1942 का आंदोलन चल रहा था, उस समय विदेशों में भारतीय भारत से अंग्रेजों को बलपूर्वक भगाने के लिए एक संगठन बना रहे थे। इस संगठन के नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से छिपकर भागे थे। सुभाष चंद्र बोस काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां से जापान के बाद सिंगापुर पहुंचे। भारत से 1915 में फरार होकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। वहां उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को हराकर जापानियों ने बहुत से भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था। उन सैनिकों को साथ लेकर आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व स्वयं संभाला तथा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। सैनिकों के बीच वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन का एकमात्र उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की। 1944 में आजाद हिंद फौज जापानी सेनाओं के साथ पूर्वोत्तर भारत के इम्फाला कोमिया क्षेत्र तक पहुंच गई, पर उस समय तक युद्ध का पासा पलट जाने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। जर्मनी हार चुका था और जापान की स्थिति भी नाजुक हो गई थी। नेतृत्व के अभाव में जापान के पतन के बाद आजाद हिंद फौज का भी पतन हो गया, जिसके अधिकांश सैनिक तथा अफसर पकड़ लिए गए। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के तीन प्रमुख अफसरों ढिल्लन, सहगल और शाहनवाज पर अंग्रेज शासन अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध में मुकदमा चलाया गया। इसके लिए दिल्ली के लाल किले में एक सैनिक अदालत कायम की गई। इस समाचार को सुनकर भारतीय जनता उत्तेजित हो उठी। देश के बड़े बड़े वकील बैरिस्टर निशुल्क इस मुकदमे की पैरवी के लिए पहुंचे। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू 30 वर्षों के बाद वकील की अदालती पोशाक में बहस करने के लिए लाल किला गए। सैनिक अदालत ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया, जिसे बाद में वॉयसराय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर रद्द कर दिया। सैनिकों का विद्रोह। 1945-46 में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घटी। अनेक स्थानों पर सैनिकों का विद्रोह हुआ। दमदम हवाई अड्डे पर हवाई सैनिकों ने विद्रोह किया। बंबई में भी सैनिकों ने विद्रोह किया। सरकार की मांग की पूर्ति के संबंध में सूचना दी गई और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इन सैनिक विद्रोहों ने ब्रिटिश साम्राज्य को आंदोलित कर दिया। मुस्लिम लीग की धमकी और अंतरिम सरकार। मुस्लिम लीग की धमकी। इस समय अप्रैल 1946 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। उसमें पाकिस्तान की मांग को दोहराया गया और स्पष्ट घोषणा की गई कि मुस्लिम लीग की ओर से पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं ने जो भाषण दिए वे बड़े ही कटु और उत्तेजक थे। अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान का निर्वाचन हुआ और उसमें बहुसंख्यक रूप से कांग्रेसी सदस्य चुने गए। 12 अगस्त को लॉर्ड वेवेल ने पंडित नेहरू को अस्थायी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए। पर लीग के सदस्य अस्थायी सरकार के कार्यों में सहायता करने के बजाय अड़ंगा खड़ा करने लगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का निश्चय किया। जुलाई 1946 में उसने इस संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया। कांग्रेस के अंतरिम सरकार में प्रवेश को लीग ने हिंदू राज्य का अत्याचार बताया और उससे अलग होने के लिए उससे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष विरोध दिवस मनाने की घोषणा की। फलतः बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि प्रदेशों में हिंदू मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए। एटली की घोषणा। संकटपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारतीयों के हाथ सत्ता हस्तांतरित कर देगी, चाहे भारतीय राजनीतिक दलों में समझौता हो या न हो। लॉर्ड एटली मजदूर पार्टी के नेता थे। माउंट बैटन योजना। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंट बैटन भारत में अंतिम अंग्रेज वायसराय नियुक्त हुए। 24 मार्च 1947 को वो दिल्ली पहुंचे और आते ही भारत की राजनीतिक समस्या के हल का प्रयास करने लगे। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद वे मई में इंग्लैंड गए। वहां से वापस आने के बाद जून 1947 में उन्होंने एक योजना निकाली जो माउंट बैटन योजना के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जब भारत की स्थिति को देखा तो जून 1948 तक इंतजार करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने 3 जून 1947 को भारत की 2 स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्यों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित करने की अपनी योजना घोषित की। कांग्रेस सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन कदापि स्वीकार नहीं करती। जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया था कि वे मुसलमानों के लिए स्वतंत्र पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अतः कांग्रेस को इस योजना को स्वीकारना पड़ा। माउंटबेटन योजना की घोषणा के बाद दंगों ने और भी विकराल रूप ले लिया। मुस्लिम लीग द्वारा कटुता फैलाने के खतरनाक परिणाम हुए। जनता को क्रूरता और पशुता का शिकार होना पड़ा। लगभग 5 लाख लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हो गए। महात्मा गांधी ने स्थिति पर नियंत्रण रखने का अथक प्रयास किया किंतु असफल रहे। ऐसी दुखद परिस्थितियों में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ये स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत घोषित की गई। जिन्ना की जीत हुई और उन्हें उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल तथा बलूचिस्तान मिल गया। भारतीयों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार सांप्रदायिकता पर आधारित विभाजन के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। वहां वे मुसलमानों और हिंदुओं में मित्रता प्रेम स्थापित करने में व्यस्त थे। जब पश्चिम बंगाल के मंत्री महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा, नम्र बनो, सत्ता से सावधान रहो, सत्ता भ्रष्ट कर देगी। याद रखो कि तुम अपने पद पर गरीब भारत के गांवों की सेवा करने के लिए हो। जब गांधी जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे तभी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इससे समाज में शांति और सौहार्द लाने के उनके प्रयासों का अचानक और दुखद अंत हो गया। माउंटबेटन योजना की मुख्य बातें। पहला, ब्रिटिश सरकार की ये इच्छा है कि वो शीघ्र ही भारत का प्रशासन किसी ऐसी सरकार को सौंप दे जिसका निर्माण जनता की इच्छा से हुआ हो। दूसरा, संविधान सभा के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तीसरा, वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान भारत के उन भागों में कार्यान्वित नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। चौथा, उन प्रांतों को जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। पांचवा, देशी राज्यों के संबंध में मंत्रिमंडलीय योजना लागू होगी। छठवां, यदि मुस्लिम क्षेत्र देश के विभाजन का समर्थन करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए एक कमीशन नियुक्त होगा। सातवां, ब्रिटिश सरकार 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने की प्रतीक्षा नहीं करेगी बल्कि 1947 में ही ये कार्य संपन्न कर देगी। स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, देश का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत स्वतंत्र विधेयक पेश हुआ। 2 सप्ताह के बाद विधेयक पारित हो गया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख उपबंध। पहला, इसके द्वारा 25 अगस्त 1947 को भारत को 2 अधिराज्यों में विभक्त कर दिया गया जिनके नाम भारत और पाकिस्तान पड़े। भारत के अंतर्गत बंबई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल और मुस्लिम क्षेत्र को छोड़कर असम, दिल्ली और अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग रखे गए। पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के मुस्लिम क्षेत्र को रखा गया। दूसरा, नए संविधान के निर्माण तक भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से नियुक्त एक एक गवर्नर जनरल रखने की व्यवस्था की गई। तीसरा, गवर्नर जनरल का पद केवल अलंकारिक रखा गया। चौथा, 15 अगस्त 1947 के बाद देशी राज्यों पर से ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो जाएगी और उनके साथ हुई संधियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। पांचवा, विभिन्न देशी राज्यों को 2 में से किसी एक उपनिवेश में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी गई। छठवां, भारत और पाकिस्तान दोनों उपनिवेशों को अपने इच्छानुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होने या उससे संबंध विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया। सातवां, दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल को अपने अपने राज्य के गवर्नर जनरल के मनोनयन का अधिकार सौंपा गया। आठवां, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। नौवां, संविधान सभा को अपने अपने अधिराज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हुए और लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय परिषद द्वारा भारत के गवर्नर जनरल मनोनीत हुए। गणराज्य की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व ही स्वाधीन भारत का संविधान बनाने का कार्य संविधान सभा द्वारा आरंभ किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। भारत का नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके अनुसार भारत को गणराज्य घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्मरणीय बिंदु। 1905, जापान ने विशाल रूस को हराया। 1905, बंग भंग योजना। 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस में दो दल, नरम दल और गरम दल। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। गरम दल के नेता लाल बाल और पाल। 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम बनाया। 1912 लॉर्ड हार्डिंग की हत्या। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। 1916 में लखनऊ पैक्ट। 1916 होम रूल आंदोलन, लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। 1918 प्रथम विश्व युद्ध का अंत। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मार्च 1919 रोलेट एक्ट। 10 अप्रैल 1919 जलियावाला बाग हत्याकांड। 1919 खिलाफत आंदोलन। 1920 असहयोग आंदोलन। 1923 स्वराज्य दल की स्थापना। 1925 देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 12 मार्च 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 गांधी इरविन समझौता। 1931 गोलमेज सम्मेलन। 1935 भारत शासन अधिनियम। अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। मार्च 1942 क्रिप्स योजना। अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 वेवेल योजना। 1946 कैबिनेट मिशन एवं अंतरिम सरकार। जून 1947 माउंटबेटन योजना। 15 अगस्त 1947 भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।